ओम शांति। आज हम एक ऐसे विषय पर या एक ऐसे शब्द के ऊपर बाप दादा के बताए हुए महावाक्यों के अनुसार कुछ बातचीत करने जा रहे हैं, जो बहुत ही प्यारा शब्द है और वो क्या है? दुआएं। वैसे तो बाबा ने बहुत से खजाने हमको दिए हैं। उसमें मुख्य खजाने कौन से हैं ये आप सब जानते हैं। एक मुख्य खजाना पहला कौन सा है? कौन सा? ज्ञान का खजाना। ठीक है, बाबा ने ज्ञान के एक एक रतन की कितनी वैल्यू बताई है। तो ईश्वरीय ज्ञान का, तीनों कालों और तीनों लोकों के ज्ञान का, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का खजाना, कर्म अकर्म विकर्म के ज्ञान का खजाना किसके पास है? सारी दुनिया में किसी के पास है? सबाए ब्राह्मणों के। तो पहला खजाना बाबा ने हमको इतना दिया है, इतना दिया है और दे ही रहे हैं। जितनी आपकी, जितनी बड़ी आप झोली क्या कहें, जितने बड़े आप भरना चाहो है, अपने खानियों की खानियां वो आप ले सकते हैं, ले रहे हैं। ये भी एक तरह का विचित्र खजाना है। ज्ञान के सिमरण मात्र से खुशी आ जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अलौकिक ज्ञान सिर्फ बाबा के बच्चों के पास है। और दूसरा खजाना कौन सा है? गुरु है? संगम, संकल्प। दूसरा बड़ा खजाना कहा जाता है गुणों का, के जहां गुण है, हैं गुण ऐसे एक रतन है जो कि व्यक्ति को जीवन में दो बातें दिलवाते हैं, सफलता और संतुष्टता सदा ही रहेगी, क्योंकि गुणवान जो है उसको हर एक पसंद करता है। दुनिया में जितनी भी वस्तुएं आप रखनी चाहते हैं, इकट्ठी करना चाहते हैं उनके गुणों के कारण, और जितनी वस्तुएं आप फेंकनी चाहते हैं वो किस कारण? कि उनमें कोई गुण नहीं है। इसलिए गुणों का खजाना भी और दैवी गुणों का खजाना, गुण तो कई होते हैं, हर हुनर एक गुण है, हर कला एक गुण है, लेकिन दिव्य गुणों का खजाना जिसके आधार पर देवी देवता पूजे जाते हैं, सन्यासी भी पूजे नहीं जाते, महात्मा भी पूजे नहीं जाते, आजकल तो तुलसी का पेड़ भी पूजा जाता है, लेकिन कायदे सिर मंदिरों में रखकर मूर्तियों के रूप में विधिवत नहीं पूजे जाते। अच्छा, फिर और कौन सा खजाना है? हाँ? शक्तियों का खजाना है। ये एक विशेष चीज है कि दुनिया में दौलत है, खजाना दौलत को कहा जाता है, लेकिन दौलत के साथ शक्ति नहीं है तो भी आप उसको कायम नहीं रख सकते, उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, उसको बचा के नहीं रख सकते, उसको तरीके से यूज नहीं कर सकते, आपको कोई लूट भी सकता है। इस वास्ते शक्तियों का खजाना बाबा ने कहा, हम लोगों को क्या टाइटल दिया हुआ है? शक्तियों का टाइटल दिया हुआ है। ये भी एक बड़ा अमूल्य खजाना है। अच्छा, आगे चलिए, फिर और कौन सा बताया? संकल्पों का बताया। कि संकल्प समय हमारा इतना वैल्यूएबल है। वैसे तो लोग कहते हैं कि टाइम बहुत अमूल्य चीज है, गया वक्त वापस नहीं आता, लेकिन ब्राह्मणों का टाइम कोई वर्षों में, कोई सदियों में, कोई हफ्ते और दिन के रूप में नहीं गिना जाता, मिनट के रूप में भी नहीं गिना जाता, सेकंड से भी कम रूप में गिना जाता है, और वो है संकल्प। अच्छा, फिर इन सब खजाने बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन सब खजाने से सूक्ष्म और सब खजानों से अमूल्य खजाना जो कि बहुत कम इकट्ठा हो पाता है, और जो इतना मूल्यवान है, जो जन्म 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 जन्मांतर फायदा करता है, वो कौन सा खजाना है? वो है दुआओं का खजाना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को और सब खजाने मदद करते हैं, आखिर में कौन सा खजाना इकट्ठा करने के लिए? दुआओं का खजाना। ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही सफलता का साधन रूप खजाना है। दुनिया के लोग भी तीन प्रकार के खजानों को गिनते हैं, उसको वो धन मानते हैं, शक्तियां मानते हैं, एक वो गिनते हैं विद्या का, जिसको कहते हैं सरस्वती के द्वारा क्या मिला, विद्या मिली है ना। विद्या का वो लोग शिक्षा नहीं गिनते, दिव्यता विजडम यानी डिवाइन इंटेलेक्ट मिला, शक्ति सरस्वती को कहा जाता है डिवाइन इंटेलेक्ट की देवी। फिर दूसरा बताते हैं लक्ष्मी के रूप में, लक्ष्मी का भी वो स्थूल धन गिनते हैं, तो हम लक्ष्मी के रूप में ज्ञान का धन, गुणों का धन, शक्तियों का धन, सर्व धन जो है, धनवान वो है जिस लक्ष्मी रूप वो है जिसके पास सब धन है। और फिर तीसरा होता है शक्ति दुर्गा के रूप में, वो होता है शक्तियों का खजाना, जिसमें अष्ट शक्तियां, कम से कम अष्ट शक्तियां मोटे रूप में समझने के लिए हम सबको पता है कि जो शक्तियां हैं वो अष्ट शक्तियां अगर आठ की जगह छह हैं, या आठ शक्तियां बराबर बराबर नहीं हैं, तो आप जानते हैं कि सोलह कला और चौदह कला में ज्यादा फर्क नहीं होता है ना, तो फिर उसी अनुसार पीछे नंबर हो जाता है। एक पूरन संपूर्ण मासी हो तो पूरन मासी होती है, एक उससे एक दिन कम डेढ़ दिन कम हो जाता है। इसलिए ये सब जो वैल्यूएबल चीजें हैं, इन सब में दुआओं का वर्णन दुनिया वाले नहीं करते। कभी कभी कहते हैं माँ बाप की दुआएं ले लो है ना, या कोई गरीब कहता है गरीबों की दवाएं ले लो, दुखियों की दवाएं ले लो, लेकिन दवाएं चीज क्या होती है? क्या आप सिर्फ गरीबों की दवाएं ही ले सकते हैं, या दुखियों की दवाएं ही ले सकते हैं, या लौकिक माँ बाप या संबंधियों की दवाएं ले सकते हैं, या कि सारी दुनिया की दवाएं ले भी सकते हैं और दवाएं दे भी सकते हैं? इसमें भी आप दो बातें देखेंगे कि दुनिया के व्यक्तियों को दवाएं देने की ताकत नहीं है। अगर किसी के पास आप जाएंगे, मुझे याद है बहुत वर्ष पहले पंजाब में एक जगह बटाला, वहां हम गए तो वहां क्रिश्चियन लोगों ने बहुत स्कूल कॉलेज मिशन खोले हुए हैं, इंडस्ट्रियल टाउन है तो क्रिश्चियन लोग वहां काफी प्रचार कर रहे हैं, ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे उसके, तो हमको एक क्रिश्चियन पादरी के पास ले गए कि इससे आप ज्ञान की वार्तालाप करो। हमने शुरू किया तो पादरी कोई बहुत अपने धर्म का कट्टर था, उस अपनी ड्रॉअर में बाइबल रखता था, तो जब हमने बातचीत शुरू किया तो उसने बाइबल निकाल के टेबल पर रख लिया, और ज्यादातर बातचीत इस बात पे चली, वो कहता था क्राइस्ट सब कुछ है। हम कहते थे क्राइस्ट के अलावा क्राइस्ट भी है, डिवाइन फादर है। हमने इसको कल्प वृक्ष का नक्शा दिखाया, देखो ऐसे ऐसे डिवाइन फादर और भी हैं, लेकिन शिव परमात्मा सबका बीज है, गॉड। क्राइस्ट तो सन ऑफ गॉड है, वो कहता था सन ऑफ गॉड है, लेकिन सब कुछ क्राइस्ट ही तुम्हारी मुक्ति करेगा, क्राइस्ट ही तुम्हारे पाप ले लेगा आदि आदि। जब हमारी वार्तालाप पूरी हुई, मैं उठ के खड़ा हुआ तो उसने मुझे कहा गॉड ब्लेस यू। अच्छा, तो मैंने उसको कहा देखो भाई, आपने अभी अभी ये कहा गॉड ब्लेस यू, आपने ये नहीं कहा क्राइस्ट ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि हमारी वार्तालाप ही इस विषय पर हो रही थी। उसने ये नहीं कहा आई ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तो दुनिया के लोग ज्यादातर यही कहते हैं कि परमात्मा तुम्हें दुआ देगा, तुम जो भी पुण्य कर्म करोगे उसकी दुआ मैं नहीं आपको दे सकता हूं, परमात्मा देगा। परमात्मा, गरीब व्यक्ति भी किसी से पैसा मांगता है तो क्या कहता है, किसके नाम पर दे दे? भगवान के नाम पर दे दे। क्यों? कि जो तुम मुझे दे रहे हो वो मेरे में शक्ति नहीं है उसको लौटाने की, मैं तो हूं ही गरीब, लेकिन इसका फल तुम्हें परमात्मा देगा। लेकिन सारे ही मनुष्य आत्माओं में आप देखेंगे जो बड़े बड़े महान आत्माएं हैं, जो देवता हैं, देवियां हैं, उनका हाथ कई बार ऐसे दिखाते हैं, देवियों का तो खास तौर पे दिखाते हैं। ये किस चीज का हाथ होता है? ये दुआएं देने का हाथ होता है। किसी बच्चे को भी माताएं ले जाती हैं कि हमारे बच्चे के सिर पर हाथ रख दो, है ना, दुआ दे दो इसको। अब ये तो भक्ति मार्ग में चला आता है, लोग धन्य मानते हैं। बाबा ने जो हमको बताया है कि दवाओं का दवाएं पुण्य करने से मिलती हैं। एक होता है दान करना, एक होता है पुण्य करना। आप ज्ञान का क्या कर सकते हैं? ज्ञान का दान कर सकते हैं, जो आपके पास ज्ञान है वो दूसरे को दे सकते हैं। बाबा ने कहा हुआ ब्राह्मणों के बीच में ज्ञान का दान नहीं करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। ब्राह्मण ब्राह्मण को ज्ञान का दान नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक ही सहपाठी हैं। लेकिन आप दुनिया वालों को ज्ञान का दान कर सकते हैं। अच्छा, गुणों का भी क्या कहा जाता है? गुणों का दान कहा जाता है या पुण्य कहा जाता है? गुणों का भी दान कहा जाता है कि भाई कहा जाता है गुण चोर बनो, दूसरे का गुण धारण करो, दूसरे को गुण दो, ये भी एक प्रकार का दान कहा जाता है। लेकिन पुण्य किसको कहा जाता है? पुण्य तो दान से बहुत ऊंची चीज है ना। तो आप देखेंगे दानी, फिर क्या, फिर क्या महादानी, ठीक है, उसके बाद है वरदानी, वरदानी, फिर एक विश्व कल्याणी भी है। यहां सब भवन बने हुए हैं तरह तरह के। तो बाबा कहता है ज्ञानी दानी, महादानी, विश्व कल्याणी, वरदानी। ये जो वरदान है ये भी हर एक नहीं दे सकता, विश्व कल्याण का आप कर सकते हैं काम, तो ये दान की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन वरदान जो हाईएस्ट क्वालिटी का, उसके साथ भी दान लगा हुआ है, वरदान है ना। लेकिन पुण्य क्या होता है? तो पुण्य जो है, बाबा ने कहा हुआ है पुण्य उस चीज का नाम है जो दूसरे को चाहिए और आप दें, और दान उस चीज का नाम है जो आपके पास है, आप उस दूसरे को दे देते हैं, है ना। एक मुरली में बाबा ने कहा था किसी को पानी का गिलास चाहिए, बहुत जरूरत है उसको पानी की, और आप उसको चांदी का गिलास दे देते हैं। हेलो भाई, तुम पानी मांगते, हम तुमको चांदी का गिलास देते हैं, लेकिन खाली। वो क्या करेगा? वो कहेगा मुझे तो पानी का गिलास चाहिए। इस वास्ते पुण्य वो चीज है जो दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, और दान वो चीज है जो आपके पास एक्स्ट्रा है, या आप देने की स्थिति में हैं, आप दूसरे को दे रहे हैं। तो ये जो दुआ निकलती है किसी से, किसी के दिल से, वो किस चीज से निकलती है? पुण्य से। और दुआ कभी बोली नहीं जाती। आजकल तो बोल भी देते हैं, जा मैंने तुझे दुआ दी, जैसे कहते हैं जा मैंने तुझे श्राप दिया, है ना। हमारे भारत में लोग डरते भी हैं श्राप ना कोई दे दे, समझे कि जैसे श्राप दिया जा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में लिख दिया है उसने श्राप दिया, उसने श्राप दिया, तो डरते हैं। जब साधु लोग माताओं के पास घर में जाके बैल बजाते हैं तो ऐसी आंख निकाल के खड़े हो जाते हैं, तो माता डर के मारे कुछ न कुछ ले आती है कि कोई शराब ही न दे दे। लेकिन ना तो कोई किसी को शराब वैसे दे सकता है, क्योंकि वो तो आपको अपने कर्म का फल है। इसी प्रकार से कोई कहे मैंने तुझे दुआ दे दी, और सब चीज आप बोल के कर सकते हैं, थैंक्स बोल के कर सकते हैं। कोई किसी का काम कर देता है तो क्या बोलते हैं? भाई थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये भी बोला, ये वाणी से हुआ रिटर्न। लेकिन दुआ कहां से निकलती है? दुआ बोलनी नहीं पड़ती, दुआ दिल से निकलती है। और जो दुआ वाला काम करते हैं वो निस्वार्थ होता है। आपने किसी अपने रिश्तेदार लौकिक का ड्यूटी समझ के कि ये मेरा हिसाब किताब है, उसकी सेवा कर दी, वो दुआओं की कैटेगरी में नहीं जाएगी, वो तो हिसाब किताब चुकू कर रहे हैं। अगर आपने अपने किसी पड़ोसी का ध्यान रख लिया, वो भी है कि मेरा पड़ोसी है, कल को ये मेरा ध्यान रखेगा, उसमें भी थोड़ा भाव रहता है। माँ बाप बच्चों को पालते हैं कि बच्चे हमें पालेंगे, वो भी एक लेन देन का हिसाब है। किसी न किसी संपर्क में, दूर के या पास के में कोई सेवा करना, उससे दुआ नहीं मिलती। दुआ की पहली निशानी ये है, आप संपर्क वालों से भी दुआ ले सकते हैं, लेकिन वो निस्वार्थ होनी चाहिए। निस्वार्थ, बिना किसी इच्छा की, किसी का प्राप्ति रिटर्न की इच्छा के, और बेहद की दृष्टि से की जाने वाली सेवा ही दुआ है। अगर आपने अपना समझ के कर दिया कि ये मेरे सेंटर का स्टूडेंट है, इसको रिजर्वेशन दिलवा दूं, रेलवे रिजर्वेशन, अच्छा रिजर्वेशन 5 अवेलेबल है, भाई मेरे वाले को दे देना जरा, है अपना इन्फ्लुएंस लगा दूं, वो दुआ नहीं आए, दुआ की कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो भी आपको थैंक्स ही करेगा। अगर किसी अंधी माता को, किसी अंधे व्यक्ति को आप सड़क पार करवा देते हैं कि भाई चलो, वो खड़ा है, अच्छा भाई लाओ तुम्हें सड़क पार करवा देते हैं। आजकल तो लोग देखते भी नहीं, कहते टाइम चले जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कोई कर्म जो दूसरे की जरूरत को पूरा करता है और बिना किसी कनेक्शन के है, आप उसको जानते भी नहीं, आपका उससे कोई संबंध भी नहीं, एक इंसानियत के नाते से, कॉन्शियस की आवाज के आधार से, वो दुआ होती है। फिर दुआओं में भी कैटेगरी होती है, जैसे हर चीज में कैटेगरी तो है ही, आपको पता है, वकीलों में भी कैटेगरी है, डॉक्टरों में भी कैटेगरी है, शिक्षकों में भी कैटेगरी है, स्टूडेंट्स में भी कैटेगरी है, टीचर्स में भी कैटेगरी है। तो दुआओं की भी कैटेगरी होती है। एक होती है टेम्परेरी फायदा करने से, टेम्परेरी उसके बदले में दुआ मिलना। एक होती है शारीरिक या मानसिक सुख देने के बदले में दुआ मिलना, और एक होती है किसी को ऐसा उसके जीवन परिवर्तन करने से, उसका कायाकल्प करने से, कोई ऐसा उसको नुस्खा बताने से जो उसका सारा जीवन ही बदल जाए, वो दुआ मिलना। तो अब तीनों तरह की दुआओं में क्या फर्क हुआ? कुछ हो गया ना, कि कई सब्जियां होती हैं एक के बदले में एक मिल जाती है। आप एक गोभी का फूल बोएंगे तो एक बड़ा सारा फूल आपको मिल जाएगा, 1-to-1। अच्छा, एक होती है आपने मटर की फलियां बोई, किसान तो आप हैं ही, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे मटर की फलियां मिल जाएंगी, लेकिन एक सीजन, उसके बाद खत्म। ایک ہوتا آپ کوئی ایسا پیڑ لگاتے ہیں جس میں پھل بھی بہت ہوتا ہے اور کئی ورش ملتا رہتا ہے نا، 21 سال ملتا رہتا ہے، سیب لگا لو آم لگا لو، تو لگایا تو آپ نے ایک ہی بیج لیکن پھل میں تو فرق ہو گیا نا. جیسے ایسی بندوق ہوتی ہے ایک ہی گولی مارتی ہے، ایک ہوتی ہے جس میں چاروں طرف سے گولیاں نکلتی ہیں. آج کل ایسے راکٹ بھی نکلے ہیں، ایک راکٹ چھوڑو ایک راول پنڈی بھی چلا جائے، میں دلی وغیرہ نہیں کہتا، راول پنڈی چلا جائے کہیں بھی چلا جائے. تو کہنے کا بھاو یہ ملٹی پرپس. تو اس لیے ہم کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایسا کوئی کام کریں، ٹائم تو اتنا ہی لگنا، اس میں بھی سلیکشن چاہیے. وہ سلیکشن کے لیے کسی نے بتایا کہ اگر ہم اپنے سمے کے خزانے کو سمجھتے ہیں، اپنی برہمن لائف کے پرپس کو سمجھتے ہیں اور کوالٹی کو سمجھتے ہیں، ڈیپ کام کرنے کو سمجھتے ہیں، تب آپ اس طرح کی دعائیں لے سکتے ہیں. بابا نے بھی بولا ہے، بھاشن کرنے والوں کی اگر آپ لوگ لسٹ بنائیں گے تو وہ دوسری ہوگی. بہت اچھے واک کشل، بڑی بڑے قصے کہانی سنانے والے، لوگوں کو مگدھ کرنے والے دنیا میں بھی ہیں. کسی آسارام باپو یا کسی کے پاس چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، بس کیا کیا باتیں سنائیں گے، اس وقت بڑا اچھا لگے گا. جیسے گرمیوں میں کوئی شاور کے نیچے کھڑا ہو جائے، بہت ٹھنڈا لگے گا، لیکن اتنی دیر جتنی دیر فوارا چل رہا ہے. باہر آؤ تو حیدرآباد کی گرمی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی. اسی پرکار سے یہ ایک ڈیپ چیز، اندر کی تراوٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ اندر کی تراوٹ تب آتی ہے اگر آپ نے بھاشن بھی کر، بابا نے تو یہ کہا ہی ہے کہ کام سادھارن ہی ہے. ایک ایکٹر بھی کیا کرتا ہے، ایکٹر کو کوئی بھی کام دے دو، وہ ایکٹر اس کو آپ سادھارن نوکر ہی بنا دو یا اس کو آپ کوئی پولیس مین جو بھی بنا دو، تو ایکٹر اصلی والے سے اچھا پارٹ کرتا ہے، تب اس کو ایکٹر کہا جاتا ہے اور اس کی لوگ تالی بجاتے ہیں. نہیں تو کوئی ڈاکٹر جا رہا ہوگا تو ڈاکٹر کو دیکھ کر کوئی تالی تھوڑی بجائے گا، لیکن ایکٹر ڈاکٹر بن کے جائے گا تو اس کو تالی بجائیں گے کہ بھائی کیا ایکٹنگ کیا ہے. اسی پرکار سے بابا بھی کہتا ہے کہ برہما بابا نے سارا کام سادھارن طور پہ کیا، تنی سادھارن لیا، لیکن برہما بابا نے سادھارن کام کرتے ہوئے اسادھارن رہے، ٹھیک ہے نا، اسپیشل رہے، وشیش. اسی پرکار سے برہمن نام ہم نے رکھوا لیا تو ایسے تھوڑی رکھا لیا بی کے، بی کے کا ٹائٹل جو ہے بابا جنم لیتے ہی دے دیتا ہے، اور جگہ تو ڈگریاں پاس کرنے کے بعد ملتا ہے، کیونکہ بابا نے جنم دیا تو کوئی شکتی بھی ساتھ دیتا ہے، جس کا بچہ ہوتا ہے اس کو طاقت دیتا ہے. تو ہمیں یہ اسادھارن، سادھارن کو اسادھارن بنانا، جیسے بابا کہتا ہے کیڑے کو بھرمری جو ہے اڑا دیتی ہے، بھکتی مارگ میں کہتے ہیں لنگڑا ویکتی پہاڑ پار کر جاتا ہے، اندھے کو دکھنے لگ جاتا ہے، آدھی آدھی، یہ سب اسادھارن الوکتا کے ساتھ سمبندھت ہے. تو الوکتا میں دعائیں لینے کا کام کون کر سکتا ہے؟ آپ کہیں بہت اچھا لیکچر کریں گے، آپ کو لوگ تھینکس کر دیں گے، بہت بڑا ہے کوئی گفٹ دے دیں گے، آپ تو خوش ہو جائیں گے. وہ لیکچر کرنے والے کو پوچھو، اس کے ساتھ وہ پہلے جا کے تیاری کرے گا، آج یہ ٹاپک، اچھا مجھے ٹاپک بتاؤ، اچھا پھر ٹاپک کے اوپر سوچے گا، پھر ادھر ادھر سے کچھ جوڑے گا، اچھا پھر سوچے گا کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں بھاشن کرنے والے، سب سے اچھا بھاشن میرا ہونا چاہیے، پھر اس کو یہ خیال آئے گا. جو ویکتی ایسی ایسی باتیں سوچتا ہے، وہ اس کے اندر کانشیسنیس کیا ہے، وہ بھاشن کانشیس ہے یا دعا کانشیس ہے؟ ہو نہیں سکتا دعا کانشیس. اس کو یہ ہے کہ واہ کوئی تعریف کرے میری، پھر اگر نہیں کوئی کرتا تو جا کے بولے گا آج میرا بھاشن اچھا نہیں ہوا، تاکہ کوئی بولے نہیں بہت اچھا تھا، کیونکہ دل تو خوش کرنا ہے نا اپنا. تو بابا کہتے ہیں اس لیے میرے پاس بھاشن کرنے والوں کی لسٹ بھی بہت چھوٹی ہے. اسی پرکار سے اگر آپ ٹوٹلی دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر الیکشن ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی الیکشن ہوا، الیکشن میں یہ بنا، پارلیمنٹ کا ممبر بنا، پھر اس کے بعد اور ہوا، پھر منتری بنا، پھر اور ہوا، پردھان منتری بنا، ایک بنا. آج کل تو اس کے اوپر بھی ہر وقت بن جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا ادھر ادھر اپوزیشن اس کا رہتا ہی ہے کہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں اس کو کیسے گرائیں. چار کٹھے ہو کر، جیسے ابھی نیپال میں ہوا، جو پردھان منتری پہلے تھا جب ہم لوگ نیپال گئے تھے وہ تھا، اسی پارٹی کا دوسرا بنا، اب اس نے پھر اور کٹھے کر کے اس کو گرا کے بن گیا. آج کل تو یہ ہے. بابا کہتا ہمارے گیان میں کیا ہے، الیکشن نہیں ہے. کیا ہے ستیوگ میں آپ کا پد کس آدھار پر ہے؟ الیکشن پر ہے، الیکشن نہیں ہے، لیکن سلیکشن تو ہے. اچھا سلیکشن بھی کیسے ہوتی ہے؟ اب اسی دن بابا نے کہا کہ اچھا چلو برہما بابا جو ہم سب سے بڑے ہیں ان کو کہا کہ اچھا تم ذرا 108 کی مالا تو بنا دیجئے. پھر بابا نے کہا اچھا آدھی بنا دیجئے. بابا تو پہلے بھی ساکار میں بھی مالا بنایا، بچوں سے بنوایا کرتے تھے کہ اچھا تم مالا بنا کے لاؤ. اچھا تو بابا نے کہا اچھا 54 کی بنا دیجئے مالا. اب یہ کیا ہے، مالا کیا ہے؟ یہ بھی ایک سلیکشن ہے. ابھی آپ مالا بنانے بیٹھے مان لو، تو کئی ایسے نام ہوں گے جس میں سب سہمت ہوں گے، یونانی مسئلہ سب کہیں گے ہاں کریں گے کہ یہ ٹھیک ہے. اچھا کچھ نام ایسے ہوں گے. اس کے بعد جب آگے بڑھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر ایسا شروع ہوگا. اچھا پھر کیوں، اس میں کیوں کہ تھوڑا سوچیں گے کہ تھوڑی ابھی چاول میں تھوڑا سا کن ہے. اچھا اس کے پشچات اور آگے چلو تو پھر کمپٹیشن ہو جائے گا کہ یہ رکھیں یا یہ رکھیں، یہ رکھیں یا یہ رکھیں، ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے تو کہتے ہیں اس میں یوگ کس نے کروانا ہے، تو ایک ہی طرح کے 20 ٹیچر ہوتے ہیں اور یوگ ایک کو کروانا ہوتا ہے. پھر ایک کو مان لو رکھ لے، کئی تو ایسے ہوتے ہیں ان کا پکا ہے اس کو کرانا ہے، کوئی سب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، لیکن کسی کا آئے گا تو کہیں گے اس کو رکھا، اس کو بھی رکھ سکتے تھے، اس کو بھی رکھ سکتے تھے. تو اس پرکار سے یہ سلیکشن ہے. تو سلیکشن میں آگے آنے کے لیے کیا چاہیے؟ دعائیں چاہیے کہ اس کو اوکے کیوں ہوتا ہے، کوئی ایسا ہے جس کا سب اوکے کرتے ہیں. تو وہ ویکتی سیوا کر کے آتا ہے، مان لو ہماری دادی جی امریکہ کا ٹور لگا کے آتی ہیں اور آ کے یہاں پر سناتی ہیں، میں امریکہ گئی تو کیسے سناتی ہیں. آپ ہمیشہ دیکھیں گے بڑی نمرتا سے، بڑے پیار سے، آپ سب کی اور سے ہم گئے وہاں، آپ تو بنا ٹکٹ کے ہی چلے گئے، دیکھو ہمارے ساتھ رہے، بابا نے دیکھو ہم کو بتایا، ایسے ایسے سنائیں گی، سماچار سنائیں گی، لیکن اس میں میں کا بھاو نہیں ہوگا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسے کیا، نہ ہوگا ہی نہیں. اب مرلی دادی جی سناتی ہیں، مرلی ہم بھی سنا سکتے ہیں، مرلی ٹیچرز بھی سناتی ہیں، تو آپ دیکھیں گے ڈفرینس کیا ہے. یہاں پر دادی جی مرلی سنائیں گی، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ دادی جی، یہ نمت ہے دادی سنا رہی ہے، لیکن اس کے اندر لگے گا کہ بابا نے کروایا، دیکھو جی بابا نے ہمیں وہاں بھیجا، بابا نے اس سے ہماری ملاقات، نام بابا کا ہی لیں گے کیونکہ بابا تو ٹریڈ مارک ہے، اس کے بغیر تو دکان چلنی نہیں ہے. لیکن اندر کیا ہے، اندر میں آپ دیکھیں گے فرق ہوگا، کہاں کا اپنی پرسنالٹی جو ہے وہ اندر آئے گی. تو وہ نرمانتا، وہ نمت روپ وہ رہا، اور پھر کمپیٹیٹیونیس بھی رہے گی کہ ہم گئے تھے وہ دوسرا سن رہا ہے، وہ نہیں گیا تھا نا، اس کو بھی پتہ لگے گا ہم یہ کر کے آئے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے اندر دوسروں کے اندر بھی یہ کوشچن پیدا کر دیتی ہیں، یہ کیوں، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں، یہ کیوں نہیں. اس پرکار سے ہماری سلیکشن نیچے کو چلی جاتی ہے یا کوشچن مارک پیدا ہوتا ہے. یوں تو بابا نے کہہ رکھا ہے کہ جن بچوں کو میں نے چنا ہے بھلے آپ لوگ آج ان کو سویکار نہ بھی کرو، یہ کیوں؟ بابا نے کہا میں نے چن رکھا ہے، میں آپ ان کو کروا لوں گا، صاف صاف کہا ہوا ہے، میں اپنے ایسا کر کے سب کو ہاں کروانی ہے، और उनको भी बोलता है तुमको बनना ही पड़ेगा, जो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत है एंगुलरिटीज उसको राउंड ऑफ तो करना ही है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, बाबा तो करवाएगा। इस वास्ते ये सिलेक्शन के लिए ये बड़ा जरूरी है कि हम अकेले नहीं है। तो बाबा कई शब्दों में इस बात को कहते हैं, कभी कहते हैं सबसे सर्टिफिकेट लेना है तुमने, कहते हैं ना कि जी बाप से सर्टिफिकेट लेना है, अपने आप से सर्टिफिकेट लेना है, टीचर से सर्टिफिकेट लेना है, अपने साथ वालों से सर्टिफिकेट लेना है। वो बात सेम है कि क्या हम अकेले कि मैं और मेरा भगवान, जैसे कई लोग कहते हैं ना ब्रह्मा बाबा नहीं चाहिए, ब्रह्मा बाबा तो निर्माणता से कहता है कि ब्रह्मा बाबा से तुमको क्या मिलना है, हाँ, मिलना तो उससे है, लेकिन कई इसका नजायज फायदा लेकर अभिमान के कारण सोचते हम ब्रह्मा बाप जितना वो सीखता वो हम भी सीख लेंगे। इसी प्रकार से कई परिवार में रहने के लिए अगर जरा सा उनको आगे कर दो किसी बात में, कोई एक हुनर आ जाए या उसकी कोई महिमा कर दे, तो व्यक्ति ये भूलकर कि मैं महिमा के अंदर अपनी बाकी चीजों को ना खोऊं, बाकी सब्जेक्ट्स को मिस ना करूं, वो भूल जाता है। मान लो आपकी क्लास में कोई धनवान व्यक्ति आता है, अब नेचुरली धनवान है, उसको यज्ञ में धन से सहयोग देता है तो उसको उतना रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार यज्ञ चलता है, बाबा के यज्ञ में सारे लोग तो धनवान नहीं है, बहुत गरीब भी हैं, गरीबों की खातिर भी उसकी खातिर करनी पड़ती है। और वो धनवान व्यक्ति बड़ा खुश है कि देखो दादी आई, मैं आया सबसे पहले मैं ही दादी से मिला। जो बेचारे रोज सुबह टाइम पर क्लास करते हैं, योग में आके बैठ जाते हैं, वो परे खड़े हैं, है जी, और मेरा तो बच्चा भी है, बच्चे को भी दादी जी ने प्यार कर दिया है कि देखो बड़ा अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अच्छा है, एक हिस्सा तो अच्छा है, दुनिया में भी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई विशेषता होती है तो लौकिक रीति में उसकी विशेषता को यूज करने के लिए लोग उसके अवगुण को दबा देते हैं, उसका वर्णन ही नहीं करते हैं। मान लो एक रामलीला हो रही है, राम का पाठ करने वाला बहुत अच्छा है लेकिन वो सिगरेट पीता है, दुनिया में ऐसा होता है, वो कहेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, जाओ अंदर जाके सिगरेट पियो, पाठ तो अच्छा करता है ना, तो उसकी इस बात को कोई नहीं पकड़ेगा, अरे कोई बात नहीं चलो। ऐसे ही रावण का पाठ करने वाले तो वो शराब पीते हैं, बहुत सारे देवी का जगराता गाने वाले शराब पीते हैं अंदर जाके, क्योंकि सारी रात वो जागते हैं, उनका सिस्टम है ये, लेकिन वो कहेगी वाह वाह बहुत अच्छी माता की भेंट गा रहे हैं, चलो ठीक है। दुनिया में भी पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं, बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है, बच्चे की जायज नाजायज सब बात स्वीकार करते हैं। इस ज्ञान में भी ऐसा ही है कि किसी व्यक्ति की कोई विशेषता काम आ रही है, वो विशेषता की तारीफ हो रही है, उसकी महिमा हो रही है, उस विशेषता कोई ज्ञानी बहुत है उसकी ज्ञान की विशेषता की, लेकिन वो व्यक्ति इग्नोर कर देता है कि मुझे योग भी लगाना है। कोई योग बेचारा सुबह सुबह आके योग में एन टाइम पर बैठता है, वो मुरली कम रिपीट कर सकता है तो कहेंगे इससे तो मैं ही होशियार हूँ, सुबह आके पता नहीं क्या करता रहता है बैठा हुआ, मुरली तो रिपीट करता नहीं। कई तो ऐसे भी है रेगुलर नहीं है, कभी कभी आएंगे लेकिन दिमाग तेज है तो मुरली रिपीट अच्छी कर देंगे, देखो इन सबसे अच्छी मुरली मैं रिपीट कर लेता हूँ। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हम अपनी कमजोरी जो हमारी टोटल रनिंग है उसमें हमारे में, जैसे कछुए की और वो खरगोश की दौड़ की बात है, तो धीरे धीरे कछुआ तो पहुंच जाएगा। जब बाबा ने यज्ञ शुरू किया था तो आप देखो अनपढ़ लोग थे जिनको अंग्रेजी का भी शब्द नहीं आता था, कभी विदेश यात्रा नहीं किया था, बाबा कहते थे तुम ऑक्सफोर्ड में जाके लेक्चर करोगी, तुम बड़े बड़ों के साधुओं को झुकाओगी, तो बाबा ने कहा था, उसको पता था कि आखिर दैवी गुण आखिर उनकी धारणा इनको झुकाएगी, उनकी कोई भाषा नहीं उनको झुकाती, उनकी कोई अंग्रेजी नहीं उनको झुकाती, ट्रांसलेशन भी हो जाता है लेकिन वो झुकाएगी। इसी प्रकार से बाबा ने तो कहा सब कलाओं वाले तुम्हारे आगे आके झुकेंगे, लेकिन किस चीज के आगे आके झुकेंगे, आपकी नम्रता के, आपकी निर्माणता के, आपकी बेहद दृष्टि से इसके आगे झुकेंगे, या आपने मेकअप करके ट्राई करके कुछ कर लिया। जैसे एक बार एक विदेश से भाई आए, बोले मैं आपकी बहनों को ना एक ऐसा कोर्स सिखाता हूँ जो सब बड़ी बड़ी कंपनियों वाले उनकी बहुत तारीफ करेंगे। अच्छा भाई, अच्छी बात है, सिखाओ। फिर उसने कहा इन सब कोर्स कराने वालों का मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, वो ग्रुप को और फर्दर ट्रेनिंग दूंगा, उनसे काम लूंगा। तो हमने कहा भाई अगर ऐसा करोगे तो हमारे सेंटरों में अच्छी अच्छी बहने तो गिनती की है जिनको सब जगह बुलाया जाता है, आप उनका ग्रुप बना लोगे, उनको तो और भी काम करने पड़ते हैं, बड़ी बहनें जाती हैं उनका संभालती हैं, और आप ऐसा बना लोगे तो बाकी बहनों का क्या होगा, वो सोचेंगे ये ज्यादा होशियार है, हमें भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, हमें भी जाके कोर्स करना चाहिए, तो फर्क पड़ जाएगा, हमारा तो फैमिली सिस्टम है, ऐसे नहीं हम कर सकते। बोला नहीं, ये इसको 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 ये देखो इतनी अच्छी है। हमने कहा ये अच्छी थी इसलिए इसने तुम्हारा कोर्स सीख लिया, तुम्हारे कोर्स से अच्छी हो गई, ये बताओ पहले, ठीक है कि नहीं। क्योंकि कोई व्यक्ति की पिकअप अच्छी है, लेकिन हम तो कॉम्पोजिट देखते हैं, हम अपने सारे सेंटरों को देखते हैं, सेंटरों की और बहनों को भी देखते हैं, नहीं तो यही फैल जाएगा कि पैसे वाले की कन्या को अच्छा रखते हैं, पढ़ी लिखी कन्या को अच्छा रखते हैं, फलाने को अच्छा। ये धोखा जो है ये इसी वास्ते आता है कि हम इंटरनल व्यक्ति की इंटरनल स्टेज नहीं देखते, उस व्यक्ति के अंदर बड़ी बहनों का रिस्पेक्ट है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं भी है, बड़ी बहनों की आज्ञा का पालन करते 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 संघ का रंग लगते लगते वो व्यक्ति सोना बन जाता है। और कोई कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, अच्छा तो हूँ, लेकिन उसमें ये आ गया कि मुझे तो इनकी रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगा, उनकी दुआ नहीं ले सकेगा। इस वास्ते इस ज्ञान में जैसे कोई बहुत बुजुर्ग पेरेंट होता है जिसको अपने सबसे छोटे पोते का ध्यान सबसे पहले रहता है, कमजोर का ध्यान पहले रहता है, उसको साथ लेकर चलता है। सबसे ज्यादा ब्रह्मा बाबा को आप देखिए कि 32 साल ब्रह्मा बाबा ने साकार में सेवा की और 31 साल ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त में सेवा करते हो गए। बाबा कहता है गेट नहीं खुल सकता जब तक तुम लोग तैयार नहीं। जैसे माँ बाप होते हैं, हमेशा बच्चे पहले तैयार हो जाते हैं, बच्चे देश से तैयार होते हैं, माँ बाप तैयार होकर खड़े हो जाते हैं, उनका इंतजार करते हैं, तुम भी तैयार हो, तुम भी तैयार हो, सब चलेंगे। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट कि सबके साथ लेकर चलना है, सबकी संतुष्टता ग्रहण करनी है। अपने आप को हमारे में 10 खूबियां हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मैं क्योंकि मेरे में इतनी खूबियां होगी तो बाकी मेरे परिवार मेरे से छोटे हैं, उसके अलावा आपको दुआ नहीं मिल सकती। बोलेंगे नहीं छोटे हैं, उनके मुंह दिल में तो रहेगा ना, तो फिर आपकी सिलेक्शन के अंदर नंबर घट जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है हर एक को संतुष्ट करना। अब हम देखते हैं किसी शहर में दादी जाती है, वहां कोई बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है, दादी देखने जाएगी कि नहीं जाएगी? जरूर जाएगी। आपके सेंटर का कोई स्टूडेंट बीमार हॉस्पिटल में पड़ा है, आप सोचेंगे ये तो अपने कर्म का फल भोग रहा है, मैंने क्या लेना, मैं क्लास करने जाऊं या इसका बैठ के इसको देखने जाऊं, फर्क पड़ गया ना। तो ज्ञान प्रधान हो गया लेकिन कर्म प्रधान नहीं हुआ। इस वास्ते आप देखेंगे जिन सेंटरों के अंदर टोटल, हम तो हिंदुस्तान में कई जगह जाते रहते हैं, जिन सेंटरों के अंदर पालना का संस्कार है, स्टूडेंट्स की पूछताछ की जाती है, उसका हालचाल पूछा जाता है, वो सेंटर भरपूर है। स्टूडेंट भी आके उनके वहां फूल लगा जाते हैं, झाड़ू लगा जाते हैं, सेवा कर जाते हैं। और जो सेंटर ज्ञान प्रधान है कि हमारा काम मुरली सुनाने से है, मुरली सुनाई उसके बाद चलो भाई, तो वो सेंटर ज्ञानी बहुत है, वो रचना अच्छी रच लेते हैं लेकिन उनकी पालना स्ट्रांग नहीं होती, थ्रेटिकल रहती है। इस वास्ते बाबा ने कह रखा आपको ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों पाठ बजाने हैं। रचना तो बहुत आसान है, किसी पौधे को लगाना, जैसे आजकल दुनिया में कहते हैं ना कि भाई माँ बाप के 6-6 7-7 बच्चे हो जाते हैं, खिलाने को होता नहीं, तो बच्चे फिर क्या कहते हैं, कहते हैं अगर तुम हमें खिला नहीं सकते तो हमें पैदा ही क्यों किया, ठीक है। इसी प्रकार से ज्ञान का बीज लगाने से उसमें ज्ञान तो आ जाएगा, फिर उस व्यक्ति को सेल्फ सस्टेनिंग बनाने के लिए आपको पहले अपना उदाहरण रखना पड़ेगा। अगर मेरे में त्याग नहीं है, मेरे में आराम तलबी का संस्कार है, मेरे में ग्रुप बनाने का संस्कार है कि 10-12 लोग मेरे साथ रहें, उनका मैं ज्यादा ध्यान रखूं, वो मेरा ध्यान रखें, तो मैं बेहद में नहीं आ सकता। कंफर्टेबल हूं लेकिन मेरी वो जो अनलिमिटेड सेवा है वो नहीं हो सकती। मुझे उन्हीं की दुआएं मिलती रहेंगी जो मेरे साथ रहते हैं, बाकियों की दुआओं से मैं वंचित रह जाऊंगा। आप देखिए मधुबन में किस लिए लोग आते हैं, कहा जाता है वहां के तुम सेंटर में हो, सेंटर में हद में हो, चलो मधुबन में, वहां तुम्हें बेहद का परिवार दिखेगा, जगह जगह के बहन भाई दिखेंगे, हमारा कितना बड़ा परिवार है। यहां आएंगे तो क्या करेंगे, अगर जाओगे किचन में, क्लास में जाओगे तो भी वो साथ साथ ही बैठे होंगे, इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम होगा तो भी कहेंगे मेरी सीट रख लेना मैं आ रहा हूं, वो भी सिकंदराबाद। अच्छा मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ रेलवे बुकिंग में जाएंगे तो भी सिकंदराबाद की पार्टी की बुकिंग कर लो, यहां भी मिक्स नहीं होंगे, अपने ग्रुप देख के बड़े खुश होंगे, हमारा बेहद का परिवार हॉल भरा हुआ है, पीछे मुड़ के देखो हॉल भरा हुआ, उतनी खुशी तो होगी। लेकिन वो मेरे परिवार वाले हैं, अगर कहीं कोई ऐसी घटना हो जाए जहां दो में से चॉइस हो कि तू जा या मैं जाऊं, तो कहेंगे मैं जाऊं। तो अपनी रुचि की परिस्थिति में तो हर व्यक्ति खुश रह सकता है, अगर मुझे मेरी रुचि के अनुसार सब चीज मिल जाए तो मैं संतुष्ट हुई। लेकिन ब्राह्मणों की संतुष्टता कौन सी है, रुचि की परिस्थिति में संतुष्ट या सदा ही संतुष्ट, रुचि में भी संतुष्ट और ना रुचि वाला उसमें भी संतुष्ट, वो कैसे हो सकता है? हो सकता है? जब तक आप बॉडी में रहेंगे नहीं हो सकता, वर्तमान संस्कारों को याद करते रहेंगे तो नहीं हो सकता। अगर आप तीनों कालों के संस्कारों को सामने रखेंगे तो हो सकता है, और बॉडी से अलग रहेंगे तब भी हो सकता है। इस वास्ते जब हम कहते हैं सफलता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका क्या मतलब है, ये सफलता 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 हो जाए तो हम ब्राह्मण खुश है, और कहीं असफलता हो जाए तो हमारा अधिकार नहीं है या हम ब्राह्मण नहीं है, क्या हुआ आपके? हम कहते हैं सफलता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता किसको कहते हैं हम, ये काम होना चाहिए हो गया सफलता, ये होना चाहिए हो गया सफलता, ये होना चाहिए नहीं हुआ तो फिर, मान लो हमने सोचा प्राइम मिनिस्टर को इस फंक्शन में लाना है, नहीं आया तो हमारी सफलता हुई या नहीं हुई? इसलिए बाबा कहता है कि ब्राह्मणों की सफलता का अर्थ ये है कि जय पराजय, ठीक है, हानि लाभ, उस्तत निंदा, मान अपमान, गर्मी सर्दी, दुख सुख, सब में एक समान रहना, ये हमारी सफलता है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे मत समझना कि दुनिया वाले जैसे गिनते हैं कि ये हो गया तो सफलता हो गया, फिर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं गिना जा सकता। तो ये तभी हो सकता है अगर हम आत्मिक रूप में पावरफुल हैं और उसके पीछे ज्ञान है। ऐसे नहीं, मान लो प्राइम मिनिस्टर नहीं आया तो बाबा ने कह रखा है कई ज्ञान अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है, कई बीज उसी वक्त फल देते हैं, कई देर से देते हैं, उस आधार पर हम संतुष्ट हैं, ड्रामा में शायद अभी नहीं है, या इसका अब हम ऐसे संतुष्ट नहीं है। लेकिन संतुष्टता के पीछे बाबा की बताई हुई पॉइंट्स है, नथिंग न्यू, बहुत सारी पॉइंट्स हैं। इस वास्ते ये जन्म सिद्ध अधिकार को धारण करने वाली पावरफुल आत्मा दुआएं ले सकती है, वरना अगर आप शारीरिक तौर पे देखेंगे तो कहीं न कहीं धोखा खा जाएंगे। शारीरिक तौर पे सुखी रहें, धन के आधार से सुख है, संघ के आधार से सुखी हैं, कुछ साधनों के आधार से सुखी हैं, कुछ अपनी विशेषताओं के आधार से सुखी हैं, तो उसको कहो तुम्हारा सेंटर बदल दें, ऊपर से कहेंगे हाँ बाबा आपने कहा हुआ है जहाँ चाहे वहां रखो, جہاں بٹھاؤ گے وہاں بیٹھوں گے, پھر کہیں گے لیکن لیکن ہے نا, اچھا تھوڑی دیر کے لیے بدل دو. بابا کہتے ہیں دنیا کے اس کو سناتے ہیں کہ دنیا رہنی نہیں, جو کچھ دکھ رہا ہے وہ دکھنا نہیں, اور اتنی بات کے لیے بھی گھبرا جائیں گے, اس کا کارن کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے چھوٹے آدھار بنایا ہوا, تب کر کے جو بابا ہم کو دینا چاہتے ہیں کہ جس کے آدھار سے ہم جو کہیں وہ ہو جائے, ہم چاہتے ہیں نا جو کہیں وہ ہو جائے, جو سنکلپ کریں وہ ہو جائے, جس کو سمجھائیں وہ سمجھ جائے, تھوڑی میں زیادہ پراپتی ہو جائے. ہمیشہ بابا کہتا ہے کم خرچ بالا نشین ہو جائے, اس کے لیے ہم کو اپنے اوپر ابھیاس کرنا ہے. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میرے کارنوں, میری تکلیف یا میری اس پرستھتی کا کارن یہ ہے, ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. یہ گیان ہی نہیں ہے کہنا اس کی وجہ سے میں دکھی ہوں, یہ میرے سیوا ساتھی کو بدل دو میں سکھی ہو جاؤں گا. ساری دنیا کے ساتھ میں پیس فل ہوں, لیکن جو میرے ساتھ رہتا ہے نا اس سے میں بہت ڈسٹرب ہوں, چاہے آفس میں رہتا ہے, چاہے کوئی رشتے دار ہے, چاہے سیوا میں ساتھ, یہ میرے کو کھینچتا رہتا ہے نیچے. یہ رائٹ ہے کہنا؟ نہیں ہے, کیونکہ گیان کیا کہتا ہے کہ آتما اپنا متر اپنا شترو ہے. تو ہمیں اندر کو دیکھنا ہے کہ ایسی کون سی گڑبڑ ہے. تو آپ کو گڑبڑ یہی ملے گی کہ ہم نے اپنے ساتھیوں کی ہاں نہیں بھروائی, وہ ساتھیوں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں, ہم ساتھیوں کے ساتھ سہیوگ لینے اور دینے کی بھاونا نہیں رکھتے, کچھ بڑے چھوٹے کا بھاو رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے اندر چھپا ہوا ابھیمان ہو, کوئی چھپی ہوئی ایسی چیز ہو. میں اپنے گھر سے ہی اچھی ڈریس لے آؤں مان لو اور پہن لوں, اور وہ باقیوں سے اچھی ہو جو یگ میں ملتی ہے, تو میرے اندر یہ تو آئے گا نا میری ڈریس دیکھو کتنی اچھی ہے. یا کوئی بھی چیز ہے, فینسی چیز ہے, آج کل نئے نئے جوتے نکلتے ہیں, میرا جوتا سب سے اچھا ہونا چاہیے. ایک بار ہم نے دیکھا براہمنوں کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی, اس میں یہ جو چشمہ ہوتا ہے نا ادھر سنہرے فریم والا چشمہ نکلا تھا, تو ہم نے دیکھا 14 براہمنوں میں 12 کے پاس سنہرے فریم والا چشمہ تھا ماڈرن. ان کو شوق ہے کہ کیا حرج ہے, حرج تو کچھ نہیں ہے. بابا نے جو کہہ رکھا ہے سادھارن رہو, آپ کی کوئی چیز نقصان ہو جائے آپ کو فیل نہ ہو, وہ تبھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس نیم کو پالن کریں گے. بابا نے بڑے اچھے اچھے نیم سکھائے ہوئے ہیں. جو ہی ہم لکیر سے پھانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں بڑا فائدہ ہے. سیتا نے بھی سوچا ہوگا کہ فائدہ ہرن مل رہا ہے, لیکن وہ تھا تو دھوکا. اس لیے بابا کہتا ہے کہ سادھارنتا, ابھی بھی بابا نے مرلی میں کہا ہے جو بچہ سادھارن رہے گا, اوپر سے نہیں سنکلپوں سے بھی سادھارن رہے گا, اپنے ویوہار میں بھی سادھارن رہے گا دوسرے کے, تو اس کو بہت سکھ ہے. کیونکہ سادھارن ویکتی کے اوپر سب کی کوپریشن رہتی ہے. اگر آپ کے سینٹر میں مان لو ایک بہت کوئی بھولا بھالا ہے تو سب کہیں گے اس کا دھیان, اس کو کچھ نہ کہو بھائی یہ تو بالکل بھولا ہے, بھولے کو سب چھوڑ دیتے ہیں. جو دوسرا چتر ہوتا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, تو چتر بننا اچھا یا بھولے بننا اچھا ہے؟ کیونکہ وہ سادھارن ہے, سادھارن کسی کے ساتھ ٹکراؤ بھی نہیں کرے گا, کہ مجھے کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے اچھا, وہ سکھی رہے گا. جو ٹکراؤ کرے گا پھر اس کے اندر اس کا سارا اتنا سارا الجھن سے سیدھا ہونے میں ٹائم لگ جائے گا. تو سادھارن پنے میں ایک بابا کی مرلی چلی جس میں سمپلیسٹی کے 6 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں, اس کے اتنے سکھ ہیں. سادھارن کو آشیرواد ہی آشیرواد ہے, اور اس واسطے بابا کہتا ہے سادھارن رہنا, نہ اوپر نہ نیچے, نہ دوسرے کو دیکھنا. اپنے اوپر والے کو دیکھو گے تو نراش ہو جاؤ گے یہ تو بڑا ہے, نیچے والوں کو دیکھو گے تو البیلے ہو جاؤ گے, ارے اس سے تو میں اچھا ہی ہوں. اس واسطے بابا نے کہا یہ بھی پرچنتن ہے, اس مالا بنانا بھی واسطو میں پرچنتن ہے. فلانا یہ فلانا یہ, میرا نمبر ہی نہیں آئے گا اور آپ کا دل چھوٹا ہو جائے گا. بابا نے کہا جس کا جو پارٹ ہے وہ ٹھیک ہے. کئی کہتے ہیں ہم لیٹ آئے گیان میں, پہلے آ جاتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے. کوئی کہتے ہیں ہم سرنڈر نہیں ہیں, سرنڈر ہو جائے تو ہم 24 گھنٹے بابا کو یاد کریں. آپ سرنڈر والوں کو بھی دیکھ لو, پہلے آنے والوں کو بھی دیکھ لو, سب موجود ہیں یہاں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پہلے آنے والے ٹاپ کلاس میں ہیں یا سارے سرنڈر ہونے والے ٹاپ کلاس میں ہیں. بابا کہتا ہے گھر میں رہنے والے کئی इतने उनका चेहरा देखोगे आपको संतुष्ट लगेगा। तो हमारी अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना ये बड़ी पावर है। तभी बाबा ने कहा हुआ है कि पहले अपनी संतुष्टता का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, किसी भी कारण से हैं, तो आपके मुख से जरूर निकलेगा। अगर आप दुखी हैं किसी भी ढंग से, अंदर की अंदर, अंदर के भी अंदर जाके, तो आप सुखी नहीं कर सकते पूरा किसी को। इसलिए बाबा ने कहा कि दुआओं का पाठ वही कर सकता है जो पहले खुद तो संतुष्ट हो। अगर किसी मटके में खुद ही भरा नहीं है, उसको कहो तुम आगे से दान करना शुरू कर दो, वो कहेगा पहले मैं भरूं या मैं दूसरे को दान कर दूं, जो मेरे पास है वो भी चले जाएगा। इस वास्ते ये भी बड़ी गहराई की बात है। मान लो आप ट्रेवल में जा रहे हैं, ट्रेन में आमतौर पर यज्ञ से ज्यादा भोजन मिल जाता है ना, तो आपने खा लिया, सबने खा लिया, बच गया। तो कोई आया, मान लो कि किसी दूसरे सेंटर का ही आया, तो आप कहेंगे इससे पीछा छुड़ाओ, भोजन पड़ा है, आओ भाई आओ आओ भोजन करो। हैं, नहीं जी नहीं, नहीं नहीं करो करो करो, क्योंकि आपका तो कुछ घिसना ही नहीं, आपको तो फेंकना ही है वैसे भी, वो कोई दान नहीं है। और अगर आपने देखा कि हम चार जने पार्टी के बैठे हैं, दो कोई और सेंटर वाले भी आ गए, उनके पास भोजन नहीं है, आप सोचते हैं ये जाए तो हम भोजन करें, हैं? अगर अगर ये भी साथ मिल गया तो हमारा तो भोजन ही कम हो जाएगा, फिर क्या पोजीशन है? या ये सो जाए थोड़ा, वो कह भी भोजन भोजन नहीं, अरे अभी तेरा अभी भूख नहीं है। पर्पस ये है कि ये सो जाए, फिर हम अपना भोजन निकालें, या कोई अच्छी चीज छुपा के रखी हुई है वो खाएं, फिर क्या होगा? इस वास्ते बाबा कहता है तब पता लगेगा ये देवी परिवार वाले हैं या मतलबी है। इस वास्ते दान में भी बड़ी बात होती है। आप स्पेयर टाइम है, आप क्लास के वक्त बैठे हैं, कोई स्टूडेंट आ गया, आप उसको कोर्स करा देते हैं। आप सोने जा रहे हैं, पहले कोई आया नहीं, वो आके कहता बहन जी मैं इतनी दूर से आया, मुझे कोर्स करा दो, आ गए आप इस वक्त हैं, जा तू करा दे। वो कहेगी मैं क्यों जाऊं, तुम ही करा दो ना। फिर कहेंगे अच्छा ये मैगजीन पढ़ ले, कल से आना तुम, हैं? ये क्या है? तब बाबा कहता है कि अपनी ड्यूटी को, आजकल ऐसा भी है किसी को कोई चार्ज मिल गया, वो अपने चार्ज के आगे इंचार्ज बना लेते हैं, उसके भी आगे। आप देखेंगे चार्ज वाले की थर्ड ग्रेड वाला काम कर रहा होगा और चार्ज वाला बैठा होगा, उसको कहेगा जा ये करिया वो करिया, खुश है काम तो हो रहा है, लेकिन उसका फल किसको मिल रहा है? चार्ज मुझे मिला था, करवा मैं किसी और से रहा हूं, मैं बड़ा खुश हूं, मैं बहुत चतुर हूं क्योंकि वो कर रहा है बेचारा, लेकिन उसका फल किसको मिलेगा? उसको मिलेगा। तो मैंने अपना चांस भी गवाया। चार्ज मैंने चांस है या चार्ज मैंने ऑफिसरी है? इस वास्ते बाबा कहते हैं ये ज्ञान बहुत गहरा है। इसमें जो दिखता है वो नहीं है, जो नहीं दिखता है वो है। तब बाबा कहता है कि आज की दिन के जो नामी ग्रामी लोग हैं, बड़े गिने जाए, मेरी लिस्ट में शायद वो ना हो, उसमें कुछ हो थोड़े से, तो मेरी लिस्ट दूसरी है। एक अमीर व्यक्ति यज्ञ में 20,000 रूपये ऐसे दे देता है, एक गरीब व्यक्ति 20 रूपया मेहनत से देता है, किसका ज्यादा बाबा के अकाउंट में होता है बताओ? 20,000 तो बहुत है और वो तो 20 है, उसका तो शर्म भी आती है सुदामा की तरह बेचारे को कि मैं दूं कि ना दूं, छुपा के दूं, कैसे दूं, ऐसे करके डालूं। लेकिन बाबा के पास किसका फल है? जिसने पेट काट के किया। बाबा ब्रह्मा बाबा ने सारा काम पेट काट के, नींद गंवा के, भूख गंवा के, टाइम को गंवा के, आज भी देखना हो तो दादी जी को देख लो कितना काम होता है, नहाने जा रहे होते तो भी पकड़ लेते हैं दादी एक मिनट, तो वो पुण्य कौन करवा रहा है उनसे? वो शिव बाबा करवा रहा है कि इनसे हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, और वो भी कहते हैं कर लो कर लो कर लो, और यहाँ पुण्य का चांस भी आए तो कहते कल कर लेंगे, तो फिर नंबर कहाँ जाएगा आप सोचिए। इस वास्ते अगर हमने दवाएं लेनी है तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा था क्लियर, एक है क्लियर इंटेलेक्ट, क्लीन माइंड। अब क्लीन और क्लियर में भी फर्क होता है। क्लियर क्या होता है? क्लियर मैंने साफ करना है ना, फोकस करना। मान लो आपके पास एक कैमरा है और कैमरा के ऊपर, शीशे के ऊपर कुछ मिट्टी लगी हुई है, आप उस मिट्टी को साफ नहीं करेंगे तो कितनी भी अच्छी फिल्म होगी अंदर वो ठीक नहीं आएगा। یہ آپ کے کیمرے کا فوکس ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ پھیلا ہوا ہے، تو جب تک آپ کیمرے کے فوکس کو اکٹھا نہیں کریں گے تب تک آپ کا کلیئر نہیں آئے گا۔ تو بدھی کے لیے بابا نے کیا کہا ہے، بدھی کیا ہونی چاہیے، کلیئر، بدھی کی لائن کلیئر۔ کلیئر مینس جیسے روشنی ہوتی ہے، کار چل رہی ہے، اس کی روشنی اگر ادھر ہی جا رہی ہے، سڑک کی طرف نہیں جا رہی، یا اس کے آگے مٹی ہے، اس کو صاف کرو۔ لیکن بدھی باہر کے کام کرتی ہے، کہ جب آپ باہر کے واتاورن میں جاتے ہیں، جیسے کار چلتی ہے تو باہر ٹرک آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، اس میں بدھی کام کرتی ہے۔ بدھی کو تب کام کرنا پڑتا ہے جب آپ ڈاؤٹ میں ہیں، شنشے میں ہیں، تب بدھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ دیوتاؤں کو بدھی کی ضرورت پڑتی ہے؟ دیوتاؤں بدھی کو یوز کرتے ہیں؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پوتر بدھو کہا جاتا ہے نا، کیوں؟ ایسا نہیں کہ ان میں بدھی نہیں ہوتی، لیکن وہ بدھی کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو۔ آپ مان لو یہاں سے اپنے کمرے میں جاؤ گے، آپ کو بدھی یوز کرنی پڑے گی کہ میرا یہ کمرہ ہے؟ نہیں۔ اپنے گھر میں جاؤ گے، سینٹر سے بدھی یوز کرنی پڑے گی؟ نہیں۔ نمبر دیکھو گے کیا، میری گلی کا نام لکھا؟ نہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کو ڈھونڈنے جاؤ گے تو آپ کو بدھی یوز کرنی پڑے گی، پوچھو گے بھائی یہی برہما پوری ہے، یہی 600 نمبر کا ہال ہے، پوچھو گے نا۔ ایسے دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ تو بدھی جب یوز کری جاتی ہے جب آپ کو پتا نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، ڈاؤٹ ہے، جو کہ آپ چورستے میں کھڑے ہیں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ مان لو آپ نے احمد آباد کی بس میں جانا ہے، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں، آپ پوچھتے ہیں بھائی احمد آباد جا رہی؟ ہاں جی۔ آپ بیٹھ جاتے ہو، پھر ساتھی سے پوچھتے ہو بھائی تم بھی احمد آباد جا رہے ہو نا؟ کہتا ہاں جی۔ آپ کو تسلی ہوتی ہے، پھر بھی آپ کو تھوڑی دیر میں شک پڑتا ہے، تم بھی احمد آباد جا رہے ہو نا؟ کیوں؟ کہ شور نہیں ہے۔ اس واسطے بدھی کا یوز، میں نے بدھی کا خرچہ کرنا، تو بدھی جتنی کم یوز ہو اتنا اچھا ہے۔ بابا نے کیا کہا ہے کہ تم لوگ بدھی کے آدھار پر بہت سمے جیتے رہے، مجھے بدھی والے بچے نہیں چاہیے۔ کیوں؟ بابا شری مت بدھی میں ڈالتا ہے، وہ اپنی من مت سے اس کو تولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو بابا نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بتاؤ تو بدھی کیا کر رہی ہے؟ وکیل کا کام کر رہی ہے، جو اپنی روچی کی بات ہے۔ ہاں بابا کہتا اگر کہیں ضرورت پڑ جائے تو کسی کے ساتھ مندر میں جانا پڑ جائے چلے جانا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا بابا کہتا بچے کھاؤ پیو گھومو، اس میں کیا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ جب بابا کہتا تیاگ کرو، ہاں اچھا کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون کون بتا رہا ہے؟ یہ بدھی بتا رہی ہے نا، کیونکہ ہماری بدھی ہے دوپہر سے دھوکہ دیتے 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 تو یہاں لائی ہے۔ ابھی بابا کہتے اس کو چھوڑو، شری مت لو۔ اب شری مت پہ پورا چلنے سے پہلے ہم اپنی بدھی سے رگڑ کے دیکھتے ہیں بابا کی شری مت کیسی ہے، میرے لائق ہے، میں کر سکتا ہوں، ہاتھ اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں، اٹھا کے نیچے کر لوں فٹافٹ، یہاں رکھوں یہاں رکھو، یا اونچا کر کے نیچے کر لو، یہ کون کرواتا ہے؟ یہ بدھی۔ اس لیے بابا کہتا ہے کہ دل والا چاہیے۔ تو من کو بابا نے کیا کہا، کلین کرو۔ کلیئر تو آسانی سے آپ کر سکتے ہیں، مجھے کوئی کہہ دے فلانے وقت یہ کام کرنا ہے، میں کر لوں گا، لیکن تھرو آؤٹ کوئی کام مس بھی نہ ہو، سارا کام ٹھیک ہو، فل ٹائم بابا کی یاد میں رہ کے کرے، اس کے لیے من کلیئر چاہیے۔ تو من کی کلیئرٹی میں بابا نے بتایا ہے ویرتھ اور نیگیٹو۔ اوم شانتی۔